18वीं शताब्दी, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि अवध, अयोध्या और नागपुर से लेकर कर्नाटक तक वे छल और बल के सहारे बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाने की हर संभव कोशिश में जुट गए। उनकी ललचाई नजरें समृद्ध और शक्तिशाली मराठा शासन पर भी गड़ी हुई थी, लेकिन लगभग 3 दशकों तक फिरंगियों की हर चाल को अपनी चतुराई से जिस महान राजनीतिक कुशल प्रशासक और प्रखर नेता ने कदम कदम पर नाकाम किया, उसका नाम था बालाजी जनार्दन भानू, जिसे इतिहास नाना फडणवीस के नाम से जानता है। आज से लगभग 269 वर्ष पूर्व सन 1772 ईस्वी को नाना का जन्म हुआ। उनके पिता जनार्दन पंत मराठा शासन में फडणवीस के अत्यंत शक्तिशाली पद पर नियुक्त थे। 30 मार्च सन 1756 ईस्वी पेशवा बालाजी बाजीराव ने कोंकण पर चढ़ाई कर दी। अपनी विशाल सेना के साथ वे 14 वर्षीय बालाजी जनार्दन भानु को भी अपने साथ ले गए। इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध का ये प्रत्यक्ष अनुभव आगे चलकर नाना के बहुत काम आने वाला था। इन्हीं दिनों अचानक नाना के पिता जनार्दन पंत का निधन हो गया। फडणवीस का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता था। पेशवा ने फैसला किया,
हमारे फडणवीस जनार्दन पंत का निधन हो गया है और उसका एकमात्र पुत्र बालाजी जनार्दन भानु यानी हमारा प्यारा नाना अभी अल्प वयस्क है।
किंतु नियम के अनुसार फडणवीस का पद वंशानुगत होता है और नाना अभी कच्ची उम्र का बालक है।
लेकिन समझदारी और अपना दायित्व भली भांति निभाने में वो किसी वयस्क से कम नहीं है। कोंकण के युद्ध में हम उसके साहस और बुद्धि चातुर्य को स्वयं परख चुके हैं।
वैसे तो हम भी उसके हौसले के कायल हैं, उसकी होशियारी के कायल हैं, किंतु परंतु
में समय व्यर्थ करने से बेहतर है दिवंगत जनार्दन पंत के स्थान पर उनके पुत्र बालाजी जनार्दन भानु को पेशवाई के फडणवीस पद पर आसीन किया जाए। नाना
जी। श्रीमंत।
बेटे, कभी इस आसन पर तुम्हारे पिता बैठा करते थे, आज से फडणवीस के इस आसन पर, उनके इस स्थान पर तुम बैठा करोगे। आज से तुम नाना फडणवीस के नाम से जाने जाओगे। हमें विश्वास है नाना, तुम ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगे।
पेशवा के विश्वास का मान रखते हुए नाना फडणवीस ने मराठा शासन की समृद्धि में अपना जबरदस्त योगदान देना आरंभ किया। साथ ही अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में भी नाना ने गहन रुचि लेना आरंभ कर दिया। यही कारण था कि पेशवा ने श्रीरंगपट्टम की ऐतिहासिक यात्रा में नाना को विशेष रूप से अपने साथ ले जाना आवश्यक समझा। श्रीरंगपट्टम से लौटे एक वर्ष भी ना बीता था कि नाना को गहरे संताप से गुजरना पड़ा। उनके इकलौते बेटे का अल्प अवस्था में निधन हो गया। विषम दुख से पार पाने के लिए नाना अपनी शोक संतप्त पत्नी और माता के साथ गोदावरी तट पर बसे पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पर निकल पड़े।
नाना साहब, पेशवा ने मुझे आपके पास भेजा है। वे जानना चाहते हैं आपकी तीर्थ यात्रा कब तक पूर्ण हो जाएगी।
हमारी इच्छा यहाँ से गंगा जी की ओर जाने की है।
क्या, यहाँ से गंगा जी? लेकिन पेशवा तो
क्या, पेशवा कुशल से तो हैं?
जी, पेशवा कुशल पूर्वक है नाना साहब, पर शायद आपको सूचना नहीं मिली, ईरान से अहमद शाह अब्दाली भारी फौज लेकर देश की उत्तरी सीमा तक आ पहुंचा है।
ओह।
और दिल्ली के मुगल बादशाह ने पेशवा से फौजी मदद मांगी। पेशवा अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के साथ आपको उस हमलावर से मोर्चा लेने पानीपत भेजना चाहते हैं। बताइए उन्हें क्या उत्तर दूं?
यही कि पेशवा की आज्ञा सरमाथे है, मातृभूमि की रक्षा का पुण्य किसी तीर्थ यात्रा के पुण्य से कम नहीं। मैं इसी घड़ी पेशवा से मिलने चल रहा हूँ, चलो।
सन 1761 के पानीपत युद्ध में सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसी वर्ष पेशवा बालाजी राव 24 जून को स्वर्ग सिधार गए। सतारा के राजा छत्रपति ने दिवंगत बालाजी के पुत्र माधव राव को विधिवत पेशवा घोषित किया और बालाजी राव के भाई रघुनाथ राव उर्फ राघोबा को अव्यस्क माधव जी का संरक्षक बना दिया। राघोबा बेहद महत्वाकांक्षी था, वह स्वयं पेशवा की गद्दी पर आसीन होना चाह रहा था। वो तुरंत ही अपने इस अभियान में जुट गया।
पेशवा का पद संभालने वाले में योग्यता होनी चाहिए, राजकाज और सेना संचालन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। बोलो, मुझसे ज्यादा युद्ध का अनुभव माधवराव में है क्या? क्या सोचकर सतारा के छत्रपति ने माधवराव को पेशवा की गद्दी सौंप दी? क्या आप इतने विशाल मराठा साम्राज्य की बागडोर एक नौसिखिए नादान नासमझ बच्चे के हाथ में सौंपना उचित समझते हैं? जबकि ना उसे शासन के कामकाज की समझ है और ना युद्ध का रत्ती भर अनुभव। वाह, क्या खूब! इतनी विशाल, इतनी महान पेशवाई और उसका संचालन किसके हाथों में? एक 17 साल के मासूम माधवराव पेशवा और दूसरे कुल जमा 19 बरस के नाना फडणवीस के हाथों में। मराठा साम्राज्य ना हुआ, बच्चों का खेल हो गया।
रघुनाथ राव किसी भी कीमत पर पूना की गद्दी हथियारा चाहते थे, लेकिन उनकी इस इच्छा के आगे एक बड़ी रुकावट थे पेशवा माधवराव के बाल सखा और अत्यंत विश्वास पात्र नाना फडणवीस। दांव पेच भिड़ाकर नाना को फडणवीस के पद से हटा दिया गया, किंतु नए पेशवा माधवराव को जैसे ही ये सूचना मिली, उन्होंने पूरी सख्ती के साथ इस कार्रवाई को निरस्त करते हुए नाना को फिर से फडणवीस के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे रघुनाथ राव तिलमिलाकर रह गए।
देखो, इसे कहते हैं लड़कपन। माधव राव ने बिना आगे पीछे सोचे केवल अपनी बचपन की दोस्ती निभाने के लिए हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस कल के छोकरे नाना को फिर से फडणवीस बनाकर हमारे सर पे लाद दिया। बोलो, अब इसे क्या कहोगे? हाँ,
बचपना, जिद, बालहट और क्या।
मान गए हम तुमको नाना, ऊपर से मासूम और भीतर से इस कदर सयाना। यकीनन अपने बचपन की दोस्ती का वास्ता दे देकर, वफादारी और हमदर्दी का दम भर भर कर, और उससे भी ज्यादा मेरे उचित विरोध को बगावत का अनुचित रंग देकर इस नाना ने फिर से फडणवीसी हासिल कर ली है। और यही नहीं, पहले से कहीं ज्यादा अख्तियारात भी हासिल करने में कामयाब हो गया। ये चतुर चालाक नाना।
ज्यादा अख्तियारात मतलब?
पेशवा राज अब से सब आमदनी और खर्च की पूरी जांच पड़ताल वही करेगा।
बाप रे,
जितने घपले हुए हैं, जितने घोटाले हुए हैं, उन सब की नए सिरे से जांच करेगा, वो भी बहुत सख्ती से।
ये क्या हो रहा है राव साहब, इस तरह तो हम कहीं के ना रहेंगे।
कच्ची गोलियां नहीं खेली है हमने, बहुत भारी पड़ेगा नाना को हमारे मामले में टांग अड़ाना। छक्के ना छुड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी रघुनाथ राव नहीं। अरे पेशवा बना है तो पेशवा की तरह व्यवहार भी तो करना सीखना चाहिए माधवराव। इस तरह आंखें बंद कर पूरा पूरा विश्वास कर बैठना ना समझी है, नादानी, मूर्खता, बेवकूफी। अरे मैं कहता हूँ अब्बल दर्जे का गधा बना ही है।
क्या गजब करते हो राव साहेब, पेशवा को गधा कह रहे हो?
इस नाना फडणवीस के मारे आजकल दिमाग बहुत गड़बड़ाया रहता है। पता है, हमारे भतीजे साहब माधवराव पेशवा उस नाना को फडणवीसी से ऊंचा ओहदा देने की फिक्र में है।
तो क्या उठाकर पंत प्रधान बना देंगे?
मत मारी गई है माधवराव की, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। बताओ, हमारे सामने वो कल का छोकरा, वो हमारे देखते देखते फडणवीस बना दिया गया, और हम मर गए थे क्या?
बताओ भाई, अब उसी नाना फडणवीस को पंत प्रधान बनाए दे रहे हैं। अरे आप क्या मर गए हो?
फिर बकवास।
और वास्तव में रघुनाथ राव की आशंका सही निकली। नाना फडणवीस के दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अद्भुत कार्य कुशलता ने पेशवा माधवराव को पहले ही प्रभावित कर लिया था, और बाद में जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई, नाना फडणवीस ने उसे जिस कर्मठता से निभाया, इसे देखते हुए 10 वर्ष की अवधि में पेशवा ने उन्हें फडणवीस से पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री बना दिया। तो अंग्रेजों ने इसे अपने विस्तारवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा। मराठा साम्राज्य को किसी भी तरह कमजोर करने की तरकीबें अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो गया।
एक तरीका तो वही है जो हम हमेशा यूज करता है। साउथ में हैदर अली भी हमारा दुश्मन होता, उधर में निजाम आपको हमारा साथ देता है। आई थिंक इन मराठास को कमजोर करने के लिए इन तीनों को आपस में लड़ा देते हैं।
हाँ, गुड आइडिया। ये तीनों का झगड़ा हो गया, वो इस पे अटैक करेगा और वो उस पे अटैक करेगा। और हम तीनों में से जो भी हमारा हेल्प मांगेगा उसका टेरिटरी में अपना फौज खुसेड़ेगा। मदद का बदला में हम ट्रीटी करेगा। एक बार हम जिसका टेरिटरी में घुस गया तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, वहीं जम जाएगा।
हमारा मैन पॉलिसी यही होता। यू सी दोज मराठास, निजाम एंड हैदर अली, ऑल दीज थ्री आर बिग पावर्स। अगर ये तीनों कभी यूनाइट हो गया तो साउथ से हमको उकार फेंकेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टिक टू दिस पॉलिसी। तीनों को आपस में बिड़ाते रहो, एक को दूसरा का खेला बड़काते रहो। कभी इसका कंडा पे हाथ रखो, कभी उसके कंडा पे।
यस,
तीनों आपस में फाइट काटा काटा एक दिन जरूर कमजोर हो जाएगा। हम उसका कमजोरी का फायदा उठाएगा और तीनों पर कब्जा कर लेगा।
यस, वेरी गुड आइडिया। और हमको वेस्टर्न कोस्ट में अपना डैम मजबूत करने को मांगता है।
यस,
मराठास के पास में शास्ती का आइलैंड है, वो सही का एरिया है एंड गुजरात का बहुत बड़ा एरिया है। कोई बहाना से हम मराठास को फंसाना मांगता, उनको कोई ट्रीटी में उलझाना मांगता, फिर बदला में 18 एरिया कैसा भी तरीका से अपने कब्जे में करने को।
आई अग्री। एक और बात, ये मराठा बहुत एम्बिशियस लोग है, दे वॉन्ट टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी। ये लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना मांगता है।
Oh yes, earlier they attacked Bengal, and only a few years back, they captured the whole Punjab region by defeating the Afghans. I think इसको आप दूसरा रीजन की तरफ भरने से रोकना मांगता, इसको अपने ही रीजन में फंसा देना मांगता।
Yes, उसका वास्ते हमको मराठास में फूट डालना मांगता, मराठास को आपस में लड़वाना मांगता।
Oh, don't worry, I have an idea. Madhurao Peshwa ka ek uncle hai, Raghuba. Raghuba is damn ambitious to become Peshwa himself. I am sure we can use this Raghuba as our secret agent in Maratha's stronghold. This Raghuba is the man who chased the Afghans from Indian territories.
I see. Bahadur hai.
और दगाबाज भी है। His lust for power knows no end.
Good, very good. हमारा वास्ते बहुत सही आदमी है।
और अंग्रेज अपने इरादों में कामयाब रहे। राघोबा से उनकी सांठगांठ हो गई। योजना के मुताबिक राघोबा ने अपना पांसा फेंका।
मुझे इस बात की पक्की खबर मिली है कि निजामुल मुल्क हम पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है।
निजामुल मुल्क? नाना, राघोबा काका क्या कह रहे हैं? सुना तुमने?
हमले की मुझे तो कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। हो सकता है राघोबा को किसी ने गलत सूचना दे दी हो।
गलत सूचना? और मुझे देगा? मेरा अपना विश्वास पात्र आदमी, मुझे तो इसकी कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। और तुम क्या समझते हो नाना, मैं हर किसी की बातों में आ जाऊंगा? बेबुनियाद बातों पर पेशवा से चर्चा करने बैठ जाऊंगा? देखो नाना, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मोर्चों पर पेशवा राज के दुश्मनों को शिकस्त दे चुका हूं मैं। और जितनी आप दोनों की उम्र है, कुल मिलाकर उससे कहीं ज्यादा बरस बिता चुका हूं पेशवा सेना में, और वो भी एक सेनापति की हैसियत से। स्वर्गवासी बालाजी बाजीराव पेशवा ने बड़े विश्वास के साथ मुझे पंजाब फतह करने भेजा था, इसलिए नहीं कि मैं उनका सगा भाई था, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरी उस क्षमता पर पूरा भरोसा था जो दुश्मन की हर हलचल को हवा के रुख देखकर ही भांप लेता था। मैंने भी उनके भरोसे को कभी झुटलाया नहीं, हर बार सच करके दिखाया। खूंखार अफगानों की तूफानी चाल से बढ़ती बेशुमार फौज को अपनी उसी क्षमताओं के बल पर पंजाब की धरती से उखाड़कर फेंक दिया। पंजाब को इस महान पेशवा राज का एक हिस्सा भी बना दिया। कितने दुख की बात है कि जिस पेशवाई की खातिर मैंने कभी अपनी जान को जान ना समझा, आज उसी पेशवाई के हाथों मेरी सारी क्षमताओं, अनुभवों, वफादारियों को इस कदर सरसरी तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है और सिरे से खारिज भी किया जा रहा है।
राघोबा काका, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है।
तो फिर कैसा है आखिर? क्या मैं अकारण ही निजाम पर हमले का आरोप लगा रहा हूं? क्या बिना किसी ठोस वजह से पेशवा राज को युद्ध की आग में धकेलना चाहता हूं मैं?
नहीं, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा काका साहेब। हमें आपकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है।
है ना? तो फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुंबई में अंग्रेज गवर्नर जनरल से तुरंत संधि कर लो।
संधि? कैसी संधि और भला क्यों?
इसलिए कि निजाम की ताकत बहुत बड़ी है। संधि करने पर अंग्रेजों से हमें पूरी फौजी मदद मिल जाएगी।
और बदले में क्या देना होगा उन्हें?
कुछ ज्यादा नहीं, केवल वसई और शास्त्री के इलाके।
और राघोबा के इस तरह जोर देने पर पेशवा माधवराव को अंग्रेजों से संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ना तो निजाम हमला करने वाला था और ना संधि की शर्तें पूरी होने वाली थी। बहरहाल इस बिला वजह की संधि का एक बुरा नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को पेशवा के दरबार में घुसपैठ करने का मौका मिल गया। पेशवा दरबार की एक एक खामी और खूबी से वे भली भांति परिचित हो गए। राघोबा के रूप में उन्हें घर का एक भेदी मिल ही चुका था। इसी मोहरे को आगे कर राजनीति की बिसात पर अगली चाल चली गई। पेशवा दरबार में फूट के बीच बोने में अंग्रेज इस हद तक कामयाब हो गए कि पेशवा माधोराव अपने काका राघोबा की हरकतों से बेहद तंग आ गया। मजबूर होकर उसने राघोबा को कैद करवा डाला, लेकिन जल्द ही राघोबा फिर मुक्त कर दिया गया। 18 नवंबर सन 1772। रहस्यमय परिस्थितियों में 28 वर्षीय पेशवा माधोराव की मृत्यु हो गई। विशाल वटवृक्ष की भांति फैले हुए पेशवा साम्राज्य की जड़ें मानो हिल गई। माधोराव की कोई संतान नहीं थी। मृत्यु से पहले उसने अपने छोटे भाई नारायण राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राघोबा से प्रार्थना की कि नए पेशवा के रूप में नारायण राव की हर संभव सहायता करे।
वेल राघोबा, अब तुम नारायण राव का घरचन बन गया। पहले माधोराव रूल किया, अब नारायण राव रूल करेगा और तुम एक के बाद एक इन लोगों का खिदमत करेगा। It's so sad.
आपने सही फरमाया। कल के छोकरे जो मेरे सामने नंगे घूमते थे, एक के बाद एक पेशवा की गद्दी पर बैठे जा रहे हैं, और मैं वो राघोबा जिसकी बदौलत पेशवा सल्तनत पूना से पंजाब तक फैल गई, और मैं हर बार महज इन छोकरों का सरपरस्त बनकर रह गया। नहीं, ये अपमान अब मैं और नहीं सहूंगा। पेशवा की गद्दी पर अब मैं ही बैठूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हर कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं।
ओह यस, तुम सरीखा बहादुर, तुम सरीखा क्लेवर होशियार आदमी। पेशवा का गद्दी पर सबसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है राघोबा,
और अपना वो हक मैं लेकर रहूंगा। बस आप लोग मेरी मदद करते रहिए, फिर देखिए ये रघुनाथ राव क्या गुल खिलाता है।
और वाकई पेशवा पद की हवस में राघोबा ने बड़ा भयानक गुल खिला डाला। मासूम नारायण राव के खिलाफ साजिश रचकर एक दिन उसे भी मौत की नींद सुला दिया और साथ ही साथ राजधानी पुणे में भयंकर अराजकता फैला दी। लूट खसोट और आगजनी का दौर चल पड़ा। इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए राघोबा ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में नाना फडणवीस साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए परिस्थिति पर काबू पाने में सफल रहे। पेशवा साम्राज्य के 12 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक संगठन आनंद फानन में खड़ा कर दिया गया, जिसे 12 भाई के नाम से जाना गया। नाना ने इसके जरिए सतारा में बैठे छत्रपति पर जबरदस्त दबाव बनाकर राघोबा का पेशवा पद पर आरूढ़ होना निरस्त कराया और साथ ही दिवंगत नारायण राव के बेटे सवई माधवराव को पेशवा घोषित करा दिया। बौखलाए हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनवाने के लिए मराठा राज्य पर हमला बोल दिया, लेकिन नाना ने बड़ी वीरता से मुकाबला करते हुए उन्हें करारी शिकस्त दी अंग्रेजों को मजबूर होकर नाना से सुलह करना पड़ी, जिसे इतिहास में पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर इस संधि का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने के लिए सर उठाया। इस बार नाना ने उन्हें बड़गांव में बुरी तरह पराजित करते हुए उनके सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए।
नाना फड़नवीस, हमको दो दो बार बुरी तरह शिकस्त दिया है, एंड यू नो अब वो फ्रेंच एम्बेसिडर सेंट ल्यूबिन को पुनः इनवाइट किया है, हमारा खिलाफ फ्रेंच फौजों का मदद लेने को मांगता है। नो 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 नो, हम ये टॉलरेट नहीं करने को सकता। राघोबा, व्हाई यू आर साइलेंट, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं हो?
क्या बोलूं सर, इस सारे फसाद की जड़ वही नाना फड़नवीस है। जब तक वो मौजूद है, आप लोगों के कदम मराठा राज पे जम पाना एकदम नामुमकिन है सर।
तो हम उस फसाद का जड़ को उखाड़ के फेंक देगा।
अंग्रेज नाना फड़नवीस को किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाने की जी जान से कोशिश करते रहे, और उधर नाना फड़नवीस राजनीति की इस बिसात पर एक से बढ़कर एक अनूठी चाल चलते हुए अंग्रेजों की हर कोशिशों को नाकाम करते चले। अंग्रेजों को पूरी तरह अलग थलग करते हुए उन्हें एकदम लाचार बना देने की जबरदस्त योजना के तहत नाना ने निजाम, हैदर अली, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और जंजीरा के सिद्धी नवाब को अपने साथ मिला लिया। मुगल बादशाह की रजामंदी से एक भव्य और शक्तिशाली राज्य संघ कायम कर डाला। आखिरकार अंग्रेजों ने हार मानकर सालबाई की प्रसिद्ध संधि पर दस्तखत कर दिए।
ऑफ कोर्स हमने सालबाई का ट्रीटी पे दस्तखत कर दिया, बट नो, उसको मानने को नहीं सकता। हम मौका देखकर फिर कोई नया चाल चलेगा। As you know, मराठा एम्पायर का चार लोग बहुत मजबूत है। Understood? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले एंड गुजरात का गायकवाड़। ब्लैडी, ये चारों पूना का पेशवा का वफादार लोग है। एक बार इनको अपना साइड में मिला लिया तो समझो पेशवा का पावर मिट्टी में मिल जाएगा।
अंग्रेजों का यह सोचना एक तरह से सही भी था। जिन चार मजबूत खंभों पर पेशवा साम्राज्य टिका हुआ था, उनमें से किसी एक का भी कमजोर होने का सीधा अर्थ था मराठा साम्राज्य का पराजय। अंग्रेजों ने किसी तरह माधोराव सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया। उसकी महत्वाकांक्षाओं को इस कदर जगाया कि वह मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय पर हमला कर बैठा। नाना से भी उसका मनमुटाव हुआ, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों से ही मिले एक के बाद एक धोखों ने उसकी आंखें खोल दी। इसी दौरान निजाम ने मराठों के खिलाफ हथियार उठा लिया। नाना के नेतृत्व में मराठा फौजों ने उसे करारी शिकस्त दी। सन 1795 में खरडा की लड़ाई के बाद शांति स्थापित हुई, लेकिन तभी पेशवा माधोराव ने आत्महत्या कर ली। एक बार फिर पेशवा की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। साथ ही अंग्रेजों के बहकावे में आकर इंदौर का होलकर माधवजी सिंधिया से भिड़ गया। कभी अपनी एकता और संगठित शक्ति के लिए जाने जाने वाला मराठा मंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गायकवाड़ और भोसले अंग्रेजों के इशारों पर मराठा मंडल से अलग हो चुके थे। नाना ने आने वाली विपत्ति का अंदाजा लगाते हुए माधवजी सिंधिया से कहा,
माधवजी
जी,
अंग्रेजों को इस साम्राज्य में पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्हें पैर रखने की जगह मिल गई तो सारा देश खतरे में पड़ जाएगा।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ नाना साहेब, लेकिन क्या किया जाए? मराठा मंडल के जिन चार स्तंभों पर देवा की रक्षा का दारोमदार था, अंग्रेज उसमें सेंध लगा चुके हैं। दूसरों की क्या कहूं, खुद मैंने भी उनके बहकावे में आकर सम्राट शाह आलम पर हमला कर डाला। एक तरह से उन्हें बंदी बनाकर वारन हेस्टिंग्स के हौसले बढ़ा दिए। कल तक जो अंग्रेज मुगल सम्राट के आगे सिर झुकाते थे, उन्हें खिराज देते थे, आज सम्राट की खुलेआम अवहेलना करते हैं, उन्हें खिराज देना बंद कर चुके हैं।
मुगल सम्राट भारत की एकता का प्रतीक है। इन बुरी परिस्थितियों में हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, मुगल सम्राट को हर सहायता का आश्वासन दो। यही नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर जोर डालकर सम्राट को पहले की तरह खिराज अदा करने पर मजबूर करो।
लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही हालात ने तेजी से करवट बदली। पूना में राघवजी का बेटा बाजीराव छलकपट से पेशवा की गद्दी पर आसीन हो गया। उधर माधवजी सिंधिया रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हुए। नाना फडणवीस को अंग्रेज पहले ही अपना जबरदस्त शत्रु मानते थे और इन बदले हुए हालात में उन्हें सुनहरी मौका मिल गया कि अपने रास्ते के इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर डालें। निकम्मा और घोर विलासी बाजीराव पेशवा तो पहले ही उनके हाथों कठपुतली बना हुआ था। अंग्रेजों के शह पाकर खुलेआम नाना को तरह तरह से अपमानित और प्रताड़ित करने पर आमादा हो गया। उसके आदेश पर नाना को कैद कर लिया गया। हर ओर से हताश और निराश नाना फडणवीस ने आखिर 13 मार्च सन 1800 में अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। नाना फडणवीस एक कुशल प्रशासक और कुशल योद्धा होने के साथ ही अत्यंत दूरदर्शी थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे प्रबल झंझवातों के बावजूद मराठा साम्राज्य और पेशवाई की आजीवन सुरक्षा करने में कामयाब रहे थे। अपनी अदम्य राष्ट्रभक्ति, राजनीतिक सूझबूझ और अद्भुत दूरदर्शिता के लिए नाना फडणवीस इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।
और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।